سیرت نبوی میں سے متنی دور کے آج ہم اس دور کو دیکھیں گے کہ بدر میں جو فتح تو ہوئی لیکن ایک بہت بڑی فتح تھی اور وہ ایمان کی جیت تھی۔ اس جنگ کے دوران کچھ اس قسم کے مناظر اس زمین اور اس آسمان نے دیکھے ہوں گے کہ جن کو دیکھنے کے لیے انسانیت کو کتنے سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مختلف صحابہ کرام کے کیا واقعات تھے کہ جن کو پڑھنے اور بیان کرنے کے بعد آج ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ایمان پر نظر ڈالنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ ہم حضرت عمیر بن الحمام اور عوف بن حارث کا تذکرہ پیچھے کر چکے، آپ نے پچھلے نشست میں سنا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس جنگ میں کارنامے دیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معرکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے کہ جن میں عقیدے کی قوت اور اصولوں کی پختگی نمایاں تھی، اور حقیقت یہ کہ عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر قربانیاں ملتی ہیں اور انسان جم جاتا ہے۔ یہ وہ معرکہ تھا کہ جس میں باپ کے مقابلے میں بیٹا اور بھائی کے مقابلے میں بھائی بھی آیا، اور اصولوں کے اختلاف پر ایک دوسرے کے سامنے تلواریں بھی اٹھیں، اور جس کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، جس کے اوپر اسلام کی وجہ سے مشکلات ڈالی گئی تھیں، انہوں نے پھر ایسے ظالم اور قاہر لوگوں سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی۔ تو سب سے پہلا واقعہ آج ہم جو دیکھیں گے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہذا بنو ہاشم کا کوئی شخص کسی کی زد میں آ جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح آج ہمارے ہاں بعض دفعہ رشتہ داروں میں لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی شادیوں میں جاتے ہیں، دل میں حسد ہوتا ہے لیکن جا کے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، عربوں کے لیے جنگ بالکل ایک کسی قسم کی رسم تھی کہ اس میں مارے باندھے جائیں، جو بھی ہو مول ملاحظے کے لیے ان کو جانا پڑتا تھا۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حکمت دیکھیے کہ آپ نے پہچان لیا کہ بنو ہاشم کو اس مسلمانوں سے کوئی بیر نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان تھا، لیکن بس نہ نہیں کر سکے، زبردستی لائے گئے ہیں، لہٰذا آپ نے کہا ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اسی طرح ابو البختری بن حشام کسی کی زد میں آ جائیں تو ان کو قتل نہ کیا جائے، عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائیں تو بھی ان کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ اس پر عتبہ کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے، خدا کی قسم اگر اس سے میرا سامنا ہو گیا تو میں تو اسے تلوار کی لگام پہناؤں گا۔ یعنی آپ نے پیچھے سنا کہ کیسے ان کے گھر کے کئی بڑے لوگ جو تھے مارے گئے تھے، عتبہ، شیبہ، ربیہ، تو اس لیے کچھ اس قسم کی باتیں جذباتیت میں ہوئی ان کی منہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنی تو آپ نے عمر بن خطاب سے فرمایا، کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ یعنی اشارہ تھا حضرت عباس کی طرف۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیجئے، میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں، کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام اتنی سی بات پر اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی کی کہی ہوئی بات کے مقابل کوئی دوسرا بات کرے تو کیسے کرے۔ ابو حذیفہ جن کے منہ سے اس وقت یہ بات نکلی کہا کرتے تھے کہ میں نے جو بات اس وقت کہی میں اس کی وجہ سے مطمئن نہیں ہوں، برابر کا خوف لگا رہتا ہے، اور شاید شہادت ہی میرا کفارہ بن جائے کہ میں نے یہ جو اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں صرف زبان چلائی تھی، تو کہیں میرے باقی سارے نیکیاں اس کے اندر ضائع نہ ہو۔ اور بالآخر یمامہ کی جنگ میں وہ شہید ہوئے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یقین رکھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا فتویٰ جن صحابہ کو ملا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح کی بشری لغزشیں معاف کی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام انسان تھے، کوئی بیوقوف نہیں تھے، اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لیڈرشپ کی جھلکی بھی دکھتی ہے کہ آپ ایک عامر اور جابر نہیں تھے کہ لوگ آپ کے سامنے پر نہ مار سکے۔ لوگ دل کے جذبات کا اظہار کر دیا کرتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگے اور بعد میں آپ اس کی اصلاح کر دیں۔ پھر اسی طرح ابو البختری نام کا ایک شخص تھا جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو سب سے کم آپ کو تکلیف دیتا تھا، نہ آپ کو کوئی تکلیف دیتا، نہ کبھی اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آئی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جس درجے کا مجرم ہوگا اسلام اس کے ساتھ اس درجے کا معاملہ کرے گا۔ آپ کی ہدایت کے باوجود بھی ابو البختری کو قتل کیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت مجذر بن زیاد سے इनका सामना हुआ। इसके साथ इसका एक और साथी भी था, दोनों साथ साथ लड़ रहे थे। हज़रत अबू मुजस्सर ने कहा कि देखो अल्लाह के नबी ने हमें मना किया है कि हम अबुल बख्तरी को कत्ल करें। इसने कहा और मेरा साथी? उन्होंने कहा नहीं, आपके साथी को हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोस्ती के नशे में उन्होंने कह दिया अच्छा हम तो भाई साथ मरेंगे। और इसके बाद दोनों ने लड़ाई शुरू की और मजबूरन फिर अबुल बख्तरी भी कत्ल किए गए। यह है ना बुरी दोस्ती का अंजाम कि इंसान बाज़ दफ़ा छोड़ा जा सकता है लेकिन बुरे दोस्तों की सोहबत की वजह से उस फितने में कूद पड़ता है। फिर इसी तरह एक और वाक़िया जो था वो अब्दुर्रहमान बिन औफ और उमैया बिन हल्फ के नाते से हुआ। इन दोनों के अंदर दौरे जाहिलियत के दौर से ही दोस्ती थी। जंगे बदर के रोज़ उमैया अपने बेटे अली का हाथ पकड़े खड़ा था, इतने में जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ का गुजर हुआ। वो दुश्मन से कुछ जरहें छीन कर ला रहे थे। उमैया ने इन्हें देखा तो कहा क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? मैं तुम्हारी इन जरहों से बेहतर हूँ। आज जैसा मंजर तो मैंने देखा ही नहीं, क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं? मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा मैं इसे फ़िदिये में खूब दूध देने वाली ऊँटनियाँ दूंगा। ये बात सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जरहें फेंक दीं और दोनों को गिरफ्तार करके आगे बढ़े। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं उमैया और उसके बेटे के दरमियान चल रहा था कि उमैया ने पूछा आप लोगों में वो कौन सा आदमी था जो अपने सीने पर शुतुरमुर्ग का पर लगाए हुए था? इशारा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की तरफ था। इन्होंने बता दिया। उमैया ने कहा अच्छा यही शख्स है जिसने हमारे अंदर तबाही मचा रखी थी। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं इन दोनों को लेके जा ही रहा था कि इतने में हज़रत बिलाल ने उमैया को मेरे साथ देख लिया। और आप सब उमैया के नाम से जानते होंगे कि ये हज़रत बिलाल के मालिक थे और इस्लाम लाने की वजह से हज़रत बिलाल को मक्के में सताया करते थे। हज़रत बिलाल ने जब उनको देखा तो एकदम उनके दिल में वो सारे जज्बात उभर गए जो पत्थरों और कांटों पर लेटाए गए थे। कहने लगे आज या तो मैं बचूंगा या उमैया बचेगा। अब्दुर्रहमान बोले कि नहीं बिलाल, ये मेरा कैदी है। कहने लगे जो भी हो, या मैं हूँ या ये है। और इसके साथ ही उन्होंने बुलंद आवाज़ से पुकारा कि अल्लाह के मददगारों, ये रहा कुफ्फार का बड़ा गिरोह उमैया बिन खल्फ, अब या तो मैं हूँ या ये रहेगा। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि इतने में लोगों ने हमें कंगन की तरह घेरे में ले लिया, यानी चारों तरफ से पकड़ लिया। मैं इनका बचाव कर रहा था मगर एक आदमी ने तलवार सौंत कर इसके बेटे के पाँव पर ज़र्ब लगाई और वो गिरा। और उधर उमैया ने इतने ज़ोर की चीख मारी कि मैंने कभी ऐसी चीख नहीं सुनी थी। मैंने कहा निकल भागो मगर आज भागने की गुंजाइश नहीं, खुदा की कसम मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि लोगों ने अपनी तलवारों से इन दोनों को काट कर इनका काम तमाम किया। इसके बाद हज़रत बिलाल कहा करते थे अल्लाह ताला बिलाल पर रहम करे, मेरी जरहें भी गईं और मेरे कैदी के बारे में भी मुझे तड़पा दिया। यानी जिन जरहों को छोड़ा कि चलो कैदियों से ज़्यादा माल मिलेगा, वो कैदी भी मारे गए जरहें भी चली गईं। तो बस दफ़ा एक के बदले में दूसरी तरफ चीज़ पड़ जाती है। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में आता है कि उन्होंने उमैया बिन खल्फ से कहा कि घुटनों के बल बैठ जाओ। वो बैठ गया और अब्दुर्रहमान ने अपने आप को उसके ऊपर डाल दिया। लेकिन लोगों ने नीचे से भी तलवार मारकर उमैया को कत्ल किया और बास तलवारों में से अब्दुर्रहमान बिन औफ का भी पाँव ज़ख्मी हुआ। तो क्या वो वाक़यात होंगे, क्या वो लोग थे, हम तो सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। इसी तरह क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस जंग में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मामू आस बिन हश्शाम बिन मुग़ीरा को कत्ल किया? ज़रा आज अपने मामू लफ्ज़ को बोल के देखिए, दो दफ़ा लफ्ज़ माँ बने तो फिर माँ माँ बनता है। मामू से प्यार कितना होता है, लेकिन क्या वो मोहब्बत थी, अलहुब्बु फिल्लाह वल बुख्ज़ु फिल्लाह की वो कैफियत थी? उनको सबसे ज़्यादा अल्लाह प्यारा था और अल्लाह से प्यार की वजह से दूसरे भी प्यारे थे, लेकिन जब उसके मुकाबले में कोई आता सगे मामू को कत्ल कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अपने बेटे अब्दुर्रहमान जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, कुफार की तरफ से लड़ रहे थे, पुकार कर कहा फ़लाँ बता मेरा माल कहाँ है? अब्दुर्रहमान ने कहा, एक शेर पढ़ा, लम यक गैर शकता व याबूब व सारा म यक्तुल दलालुल शैब, हथियार तेज रो घोड़े और इस तलवार के सिवा कुछ बाकी नहीं जो बुढ़ापे की गुमराही का खात्मा करता है। और बाज़ रिवायात में आता है कि इनके बेटे ने कहा कि अब्बा आपको पता है कि जंग में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोले कि मैं तो देख रहा था कि तू मुझे कहीं नज़र आए तो आज मैं तुझे अपने हाथ से मारूँ। ये फ़र्क होता है कुफर और ईमान का। कुफर में मुरव्वत आ जाती है लेकिन ईमान और इस्लाम की कुव्वत एक ऐसी चीज़ है जो खून के रिश्तों को पीछे डाल देता है। इसी तरह जब मुसलमानों ने एक मुशरिकीन को गिरफ़्तार करना शुरू किया तो अल्लाह के नबी सल्लम छप्पर में तशरीफ़ ले गए। हज़रत साद बिन मास तलवारें हमाइल किए हुए दरवाज़े पर पहरा दे रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लम ने देखा कि हज़रत साद के चेहरे पर लोगों की इस हरकत का नागवार असर पड़ रहा है। आप बोले, ए साद, बखुदा ऐसा महसूस होता है कि तुमको मुसलमानों का ये काम नागवार गुज़रा। मुराद ये कि कुफार को नहीं कैद करना चाहिए। उन्होंने कहा, जी हाँ अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, यह अहले शिर्क के साथ पहला मार्ग है जिसका मौका अल्लाह ने हमें फ्राहम किया। इस अहले शिर्क को बाकी छोड़ने की बजाय मुझे ये बात पसंद है कि इन्हें खूब कत्ल किया जाए और अच्छी तरह कुचल दिया जाए। यानी इतना उनके दिल में इनकी गैर इस्लामिक और काफिराना हरकतों पर ग्रज था। कहते थे कि अगर ये बच गए, कैदी बना लिया गया, छूट जाएंगे, फिर दोबारा इस्लाम के ख़िलाफ़ सोचेंगे। तो अगर इनको मारा जाएगा तो इनके अंदर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें हैं वो भी तो साथ ही मर जाएंगी। एक और बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या हज़रत उकाशा बिन महसन के बारे में आता है। इनकी तलवार टूट गई, नबी सल्लम के पास आए। देखिए, तलवार टूटी है, हौसला नहीं टूटा। हम होते कहते अब है ही कुछ नहीं, असबाब ही नहीं, कोशिश की थी जी, अब नहीं कर सकते अल्लाह का काम। नहीं, अल्लाह के नबी के पास आए कि अल्लाह के नबी तलवार चाहिए। इत्तेफाक देखिए कि अल्लाह के नबी के पास भी कोई तलवार नहीं थी, एक लकड़ी का फट्टा सा था, आपने वो पकड़ा दिया और कहा, उकाशा जाओ इसी से लड़ाई करो। जूँ ही हज़रत उकाशा ने नबी सल्लम से लेकर वो लकड़ी का दस्ता हिलाया तो एक लंबी, मज़बूत और चमकती हुई सफ़ेद तलवार में बदल गया। इसी से लड़ाई की और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। इस तलवार का नाम ऑन यानी मददगार, आइन व नून से है, मदद। और हमेशा ये तलवार फिर हज़रत उकाशा के पास रही, इसी को अपनी लड़ाइयों में इस्तेमाल करते। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जब मुर्तदीन के ख़िलाफ़ जंग की तो उसमें ये शहीद हुए और उस वक्त भी ये तलवार इनके पास थी। ज़रा सोचिए, अपने ऊपर लेके सोचिए कि किस तरीके से वो लोग असबाब ना होने के बावजूद अल्लाह के काम करते थे। हम होते कहते तलवारें कोई नहीं जी, तीर ही कोई नहीं जी, करें क्या, मुमकिन ही नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? दुआ कीजिए, हौसले जिंदा हों, जुरत हो, ईमान की गैरत हो, वो तड़प हो कि हमने अल्लाह के दीन के लिए कुछ करना है। आपके पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह आपको सब कुछ दे देगा, लेकिन आपके पास सारे असबाब मौजूद हों लेकिन आपके अंदर ईमान ना हो, जुरत ना हो, तो फिर आप चीज़ों की मौजूदगी के बावजूद भी काम नहीं कर सकते। इसी तरह एक वाक़या बहुत ईमान अफरोज़ मुसअब बिन उमैर के बारे में हुआ। जब जंग ख़त्म हुई तो मुसअब बिन उमैर ने अपने भाई अबू अज़ीज़ बिन उमैर को देखा। अबू अज़ीज़ अभी कुफर पे थे और मुसलमानों के खिलाफ जंग में आए थे। इस वक्त एक अंसारी साहबी इनका हाथ बांध रहे थे। जब मुसअब ने इनको बांधते हुए देखा तो अंसारी से कहने लगे, इस शख्स को ना छोड़ना, इसकी माँ बड़ी मालदार है, तुम्हें बहुत अच्छा फ़िदिया देगी। इस पर वो भाई बोले, मुसअब, क्या तुम मेरे बारे में ये कह रहे हो? यानी मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मुझे पकड़ने की बात करते हो? तो हज़रत मुसअब ने कहा, हाँ, तुम्हारी बजाय ये अंसारी मेरा भाई है। ये है वो मेयार जो ईमान देता है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला कहते ना कि इनकान आबाउकुम अबनाउकुम, अगर तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे घर, तुम्हारे कुंबे बिरादरी अल्लाह और उसके रसूल से प्यारे हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से तैयार रहो जंग के लिए, अल्लाह की तरफ से पकड़ के लिए तैयार हो। ईमान कितना डिफरेंस पैदा कर देता है। जिस तरह दिल खून के रिश्तों के लिए धड़कता है, इस तरह ईमान के रिश्ते इंसान को प्यारे होने लगते हैं। और इस तरीके से उन्होंने अपने सगे भाई के मुकाबले में दीनी और मुसलमान भाई का साथ दिया। इसी तरह एक और वाक्या मुशरिकीन की लाशों को कुएं में डालने के मौके पे हुआ। जो लोग मारे गए थे कुफार की तरफ से, अल्लाह के नबी ने कहा कि इनकी लाशों को कुएं में डाल दो। उत्पा बिन रबिया को कुएं की तरफ घसीट कर ले जाया जाने लगा तो अल्लाह के नबी सल्लम ने इनके बेटे अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे पर नज़र डाली। ज़रा दिल पे लेके सोचिए, अपने हाथों से अपने बापों और भाइयों और चचाओं की लाशें उठाते हुए चोट तो पड़ती होगी, गोश्त के इंसान थे, कोई पत्थर तो नहीं था इनके जिस्मों में, लेकिन ईमान की गर्मी इंसान से बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करवा देती है। लेकिन इंसानी जज्बात होने के नाते अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे पर गम था। आपने फरमाया, अबू हुज़ैफ़ा, शायद अपने बाप के बारे में तुम्हारे दिल में कुछ एहसास आता है। कहने लगे, अपने बाप के कत्ल और उनके बारे में मेरे दिल में ज़रा भी लर्जिश नहीं, लेकिन बस मुझे एक अफसोस है। और वो क्या कि मैं ये सोचता था कि मेरे बाप में समझ बूझ है, दूरंदेश है, मुझे ये उम्मीद थी कि इनकी ये खूबियाँ इनको इस्लाम तक पहुँचा देंगी, लेकिन अब इनका ये अंजाम देख कर, अपनी तवक्को के ख़िलाफ़ कुफर पर इनका ख़ात्मा देख कर मुझे अफसोस है। इस पर अल्लाह के नबी सल्लम ने हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के हक़ में दुआ खैर फरमाई, उनका दिल बहलाया। आप देखिए कि हम अपने उन तमाम रिश्तेदारों के लिए दिल में दर्द तो महसूस करते ही हैं ना, जो अभी तक कुरान से नहीं जुड़े, जो अभी तक नमाज़ों से नहीं जुड़े, जिनको अभी तक ईमान की वो मिठास नहीं मिली। तो इनको भी तो दुख तो होता था, लेकिन मकसद की धुन और इस्लाम से प्यार इनको हर चीज़ से बेनियाज करता था। आज भी ऐसे ईमान की ज़रूरत है। याद रखिए, ये ईमान जब होगा तो फिर हमारी मोहब्बतें, हमारी नफ़रतें, हर चीज़ इस्लाम के नाम पे होगी। इसी तरह जब जंग ख़त्म हुई, मुसलमानों को बेहतरीन किस्म की फतह मिली, मुशरिकीन के लिए वाज़े तौर पर शिकस्त थी। इस जंग में कुल 14 यानी 14 मुसलमान शहीद हुए, 6 मुहाजरीन में से थे और 8 अंसार में से थे। इसके मुकाबले में मुशरिकीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इनके 70 यानी 70 लोग मारे गए और 70 कैद भी किए गए, और जो सारे के सारे बड़े बड़े लीडर और इनकी बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ थी। नबी सल्लम ने मुशरिकीन के मकतूलीन के पास खड़े होकर फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए कितना बुरा कुंबा और कितना बुरा कबीला थे। यानी कोई ऐसे भी करता है? तुम्हें तो कुंबे बिरादरी का भी ख्याल ना आया। तुमने मुझे छुटलाया जबकि औरों ने मेरी तस्दीक की। तुमने मुझे बेयारो मददगार छोड़ा जबकि दूसरों ने मेरी तायीद की। तुमने मुझे निकाला जबकि औरों ने मुझे पनाह दी। इसके बाद आपने हुक्म दिया कि इनको घसीट कर बदर के कुएं में डाल दिया जाए। हम सब ज़रा अपने इंसानी रिश्तों को सामने रख के सोचें। हमारे ख़ानदान वाले तो हमें ज़रा सा एक वक्त खाना ना पूछे तो हम कहते हैं कि हम गए थे, हमारी खातर नहीं की, हमें ये नहीं दिया, हमें बुलाया नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी का हौसला देखिए, अपने ताल्लुकात इतने अच्छे थे उनसे, लेकिन इस्लाम की वजह से ताल्लुकात बिगड़े और इसके मुकाबले में उन्होंने सारी रिश्तेदारियों और सारे अहदों को पीछे डालकर आपको कितनी तकलीफ़ दी। मारने की नीयत से आए थे ना, जंगे बदर में कोई आपको शाबाश देने तो नहीं आए थे। तो ये इंजाम देखकर कितना सुकून नहीं मिला होगा उन लोगों को जिन्होंने बहुत पहले ही इस्लाम की बुनियाद पर अल्लाह के नबी का साथ देना शुरू कर दिया था। हज़रत अबू तलहा कहते हैं कि अल्लाह के नबी के हुक्म से बदर के रोज़ कुरैश के 24 बड़े बड़े सरदारों की लाशें बदर के गंदे कुएं में फेंक दी गई। आपका मामूल क्या था कि जब आप किसी कौम पर फतह याब होते तो 3 दिन तक मैदान जंग में क्याम फरमाते। चुनाचे जब बदर में 3रा दिन आया तो आपके हुक्म के मुताबिक आपकी सवारी पर कुजावा कसा गया। इसके बाद आप पैदल चले, पीछे पीछे सहाबा कराम चले, यहाँ तक कि आप कुएं की दीवार पर खड़े हुए। फिर इन्हें इनके बापों के नाम ले लेकर पुकारना शुरू किया, ए फलां बेटे फलां, ए फलां बेटे फलां, क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगी कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती? यानी कि आप तुम ये सोचते हो कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात मान लेते तो तुम्हारा ये बुरा अंजाम ना होता, क्योंकि हमसे हमारे रब ने जो वादे किए थे हमने उनको सच पाया, तो क्या तुमसे जो अल्लाह ने वादे किए थे तुमने उनको हक पाया? यानी आप मुर्दों से बातें करता देख कर लोग हैरान थे। हज़रत उमर बोले, अल्लाह के नबी, आप ऐसे जिस्मों से बातें कर रहे हैं जिनमें रूह ही नहीं, यानी मुर्दों से बातें कर रहे हैं। इस पर नबी सल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसे तुम लोग इनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे। एक रिवायत में आता, आपने कहा तुम लोग इनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं, लेकिन ये लोग जवाब नहीं दे सकते। इस वाक्य को कोट करके बहुत सारे लोग समौल मौता यानी मुर्दे सुनते हैं, इस मौजू पे बात करते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये ख़ास तौर पे नबी सल्लम का एक मौजज़ा था। आम हालात में और भी लोग बहुत मरे मौक़ों पर, मुख्तलिफ मौक़े पर, अल्लाह के नबी ने किसी के साथ इस तरह का मामला नहीं किया। रिवायत में आता है कि बदर के मकतूलीन को नबी सल्लम की बातें सुनवाई गई थी, अल्लाह जो चाहे जब चाहे जिससे सुनवा दे। इसलिए हमारा ईमान तो ये है और शुक्र अल्लाह का करना चाहिए इस बात पर कि अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत में रखा कि जिसको ना मानने वाले बदर के कुएं में मारे गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ईमान दिया। दुआ कीजिए मरते दम तक अल्लाह ताला ईमान की दौलत हमारे हाथ में रखे, ऐसा ना हो कि किसी लम्हे हम शैतान के या नफ्स के हवाले हो जाएं और हमारा ईमान ज़ाया हो जाए। बदर की फतह हकीकत में मुसलमानों को अपने सही रास्ते पे होने की भी एक दलील बनती है। आप देखिए कि आप किसी का साथ दें फिर उसको फतह मिले तो आप दिल में खुश होते हैं ना कि शुक्र है मैंने अच्छे बंदे का साथ दिया। इस्लाम में दुनियावी फतह या नाकामी को इतना बड़ा मियार नहीं है। यहाँ ये भी जहन में रखिएगा कि फतह हो या शिकस्त, बदर हो या उहद, ईमान वाला ईमान का, इस्लाम का साथ या इस्लाम वालों का साथ, इन सारे जज्बात से ऊपर होके देता है। क्योंकि अगर हम फतह के लिए आएंगे तो ये भी एक शिर्क होगा। हम क्या कहेंगे, हमें तो इस्लाम के लिए काम करना है, फतह हो या शिकस्त हमारा साथ फिर भी साथ रहेगा। ऐसे लोगों का ईमान महफूज रहता है, वरना चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, आज बहुत कामयाबी है, आपका नाम ऊपर हो रहा है तो लोग आपका साथ दे के खुश हैं, कल खुदा ना खास्ता कोई ओहद आ गई, कोई फितना आ गया, तो फिर ऐसे लोग लुढ़क जाते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हक का साथ देने वाला बनाए, हक की वजह से दे, और फिर हक को फतह मिले या शिकस्त मिले, हम कभी भी हक का साथ ना छोड़ें। पहली ही जंग और इतनी खूबसूरत, और मुसलमानों के नाते से वो इतनी अच्छी, लेकिन कुफार के नाते से क्या हाल था, इसकी चंद झलकियाँ देखते हैं कि मक्का में शिकस्त की खबर कैसे फैली। मुशरिकीन जब मदर के मैदान से भागे तो कोई तरीके से नहीं भागे थे, बिल्कुल गैर मुनज़्ज़म शक्ल में भागे, तितर बितर हो गए, घबराहट के आलम में मक्का की तरफ गए। शर्म भी थी, नदामत भी थी, करें क्या, किस मुंह से मक्का में जाएं, बड़े बड़े बोल बोल के आ चुके हैं। इब्ने इसहाक कहते हैं कि सबसे पहले जो शख्स कुरैश की शिकस्त की खबर लेकर मक्का में गया वो हैसमान बिन अब्दुल्ला खुजाई था। लोगों ने इसे पूछा पीछे की क्या खबर है, क्योंकि उस वक्त ना रेडियो थे, ना टीवी थे, ना पेजर। हम होते तो जंग के मैदान में भी टेक्स्ट मैसेज करते रहते, आईफोन खोल लेते और उनको वेबकैम से दिखाते रहते ये हुआ वो हुआ। उस दौर में ये सब चीज़ें नहीं थी, जो लोग जहाँ होते थे वहीं फोकस होते थे, लिहाजा खबर आते पहुँचते टाइम लगता था। तो जब ये शख्स पहुँचे, लोगों ने पूछा भाई सुनाओ पीछे क्या, उसने कहा उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबुल हकम बिन हशाम, उमैया बिन खल्फ, और कुछ सरदारों का नाम लेके कहा ये सब कत्ल कर दिए गए। अब जब उसने शहर के बड़े बड़े लोगों के कदनाम गिनाए तो लोगों को हैरत हुई, लोग समझे शायद ये होश में नहीं है। सफ़ान बिन उमैया जो हतीम में बैठे हुए थे, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, कहने लगे खुदा की कसम अगर ये होश में है तो इससे मेरे बारे में पूछो, यानी अगर जुनून में सबके नाम ले रहे हैं तो मेरा भी ले देगा, तो मेरे बारे में पूछो ज़रा सुफियान की तरह। लोगों ने कहा अच्छा अच्छा बताओ भाई सफ़ान बिन उमैया का क्या हुआ, कहने का वो तो ये बैठे हतीम में बैठे हुए, बखुदा इसके बाप और इसके भाई को कत्ल होते हुए मैंने खुद देखा है। यानी इससे उनको समझ आ गया कि ये बात सच है। क्या दिल पे बीती होगी। इसी तरह नबी सल्लम के मौला अबू राफे का बयान है कि मैं इन दिनों हज़रत अब्बास का ग़ुलाम था। मौला कहते हैं उस शख्स को जिसको आज़ाद किया जाए, विलायत के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, जिसमें जो किसी को किसी ग़ुलामी से आज़ाद कराता है ना, उसमें और उस ग़ुलाम के बीच में रिश्ता है। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाया था ना, तो बिलाल हज़रत अबू बकर के मौला हैं। इसी तरह अबू राफे जो थे, इनको अल्लाह के नबी सल्लम ने आज़ाद करवाया हुआ था। ये कहते हैं कि मैं इन दिनों हज़रत अब्बास का ग़ुलाम था, हमारे घर में इस्लाम दाखिल हो चुका था, हज़रत अब्बास मुसलमान हो चुके थे, उनकी बीवी उम्मुल फजल मुसलमान हो चुकी थी, मैं भी मुसलमान हो चुका था, लेकिन हज़रत अब्बास ने अपना इस्लाम छुपाया हुआ था। इधर अबू लहब ग़ज़वे बदर में हाजिर ना हुआ। जब इसे खबर मिली कि अल्लाह ने इस पर ज़िल्लत और रूसियाही तारी कर दी है और हमें अपने अंदर कुव्वत और इज़्ज़त महसूस हुई, मैं कमज़ोर आदमी था, तीर बनाया करता था और जमजम के हुजरे में बैठकर तीर के दस्ते छीलता रहता था, वल्लाही मैं हुजरे में बैठा अपने तीर छील रहा था, मेरे पास उम्मुल फजल बैठी थी और जो खबर आई थी हम इससे बहुत खुश थे। कितने में अबू लहब अपने दोनों पाँव बुरी तरह घसीटता हुआ पहुँचा और हुजरे के किनारे पर बैठ गया, इसकी पीठ मेरी पीठ की तरफ थी। अभी वो बैठा ही हुआ था कि अचानक शोर हुआ, ये अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब आ गया। अबू लहब ने इससे कहा मेरे पास आओ, मेरी उम्र की कसम तुम्हारे पास खबर है। अब अबू लहब के पास बैठ गया, लोग खड़े हो गए। अबू लहब ने कहा भतीजे बताओ लोगों का क्या हाल रहा, इसने कहा कुछ नहीं, बस लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई, यानी हम लोगों से मुकाबले पे आए और हमने अपने कंधे इनके हवाले कर दिए, वो हमें जैसे चाहते थे कत्ल करते थे और जैसे चाहते थे कैद करते थे, और उस खुदा की कसम मैं इसके बावजूद लोगों की मलामत नहीं कर सकता। दर हकीकत हमारा सामना कुछ ऐसे गोरे चिट्टे लोगों से हुआ था जो आसमान और ज़मीन के दरमियान सफ़ेद और काले यानी चितकबरे घोड़ों पर सवार थे। खुदा की कसम ना वो किसी चीज़ को छोड़ते थे और ना कोई चीज़ इनके मुकाबले टिक पाती थी। फरिश्ते होंगे ना, यानी अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला मुसलमानों से नहीं था, किसी और ही मखलूक से था। अबू राफे कहते हैं कि मैंने अपने हाथ से खैमे का किनारा उठाया, फिर कहा वो खुदा की कसम फरिश्ते थे। ये सुनकर अबू लहब ने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया, मैं इससे लड़ पड़ा लेकिन इसने मुझे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। फिर मेरे ऊपर घुटने के बल बैठकर मुझे मारने लगा। मैं कमज़ोर जू ठहरा, लेकिन इतने में उमुल फजल ने उठकर खैमे का एक खम्बा लिया और इसे ऐसी ज़र्ब मारी कि सर में बुरी तरह चोट आ गई, और साथ ही बोली, इसका मालिक नहीं है इसलिए इसे कमज़ोर समझ रखा है। अबू लहब रुसवा होकर उठा और चला गया। इसके बाद खुदा की कसम सिर्फ 7 रातें गुजरी थीं कि अल्लाह ने उसे अदसा, एक किस्म के ताउन की बीमारी में मुबतला किया और इसका खात्मा कर दिया। अदसे की गिल्टी को अरब बहुत मनहूस समझते थे, चुनाचे मरने के बाद इसके बेटों ने इसे यूं ही छोड़ दिया। वो 3 रोज़ तक बग़ैर कफन के और कब्र के पड़ा रहा, कोई इसके करीब ना जाता, हत्ता कि इसको दफन करने की कोशिश भी ना की। इसके बाद आप देखिए कि जब लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि जी देखो कैसी औलाद है और बाप को नहीं पूछ रहे, तो फिर बेटों ने लोगों की बातों के डर से छड़ियां लेकर अपने बाप की लाश को धकेल कर घड़े में डाल के ऊपर से पत्थर फेंक दिए। अल्लाह की बात सच है ना कि तब्बत यदा अबी लहबिम वतब मा अग़नान हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल खतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जो लोग अल्लाह के मुकाबले पे आ जाएं, उसके रसूल के दुश्मन बन जाएं, उनको कभी भी चैन नहीं मिलेगा। किस्सा मुख्तसर यह है कि मक्का में बात फैल चुकी थी कि बदर में ऐसी शिकस्त हुई कि जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे। इतना ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस था कि जो लोग मरे उन पर नोहा करने की इजाज़त ना दी उन लोगों ने, ताकि मुसलमानों को खुश होने का मौका ना मिले कि ये लोग दुखी हैं। इसमें एक दिलचस्प वाक़या आता है। ग़ज़वे बदर में अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब के 3 बेटे मारे गए। वो इन पर रोना चाहता था। यहाँ ज़हन में रखिए कि उस दौर में नौहा करना, मारना, मैयत पर रोना धोना फैशन भी था, जैसे आज भी हमारे पास देहातों में लोग पूरे रस्म के तौर पर ये काम करते हैं। अब वो दूसरों को दिखाना नहीं चाहते थे कि हम रोना चाहते हैं, लेकिन रोना चाहते थे। ये शख्स खुद अंधा था। एक रोज़ उसने एक नौहा करने वाली औरत की आवाज़ सुनी, अपने ग़ुलाम को भेजा और कहा, ज़रा देखो क्या नौहा करने की इजाज़त मिल गई है, क्या कुरैश अपने मकतूलीन पर रो रहे हैं, ताकि मैं भी अपने बेटे अबू हकीमा पर रोऊं, क्योंकि मेरा सीना जल रहा है। ग़ुलाम ने वापस आकर बताया कि ये औरत तो अपने गुमशुदा ऊँट पर रो रही है। अस्वद ये बात सुनकर अपने ऊपर काबू ना पा सका और फिर बेख्तियार उसने जो अशार कहे उसका ख़ुलासा किया था, क्या वो इस बात पर रोती है कि इसका ऊँट गायब हो गया और इस पर बेख्वाबी ने इसकी नींद हराम कर रखी है। तू ऊँट पर ना रो बल्कि बदर पर रो जहाँ किस्मतें फूट गईं। हाँ हाँ बदर पर रो जहाँ बनी हसीस, बनु मखज़ूम और अबुल वलीद के कबीले के बड़े बड़े लोग मारे गए। अगर रोना ही है तो अकील पर रो और हारिस पर रो जो शेरों का शेर था। तो इन लोगों पर रो और सबका नाम ना ले, और अबू हकीमा का तो कोई हमसर ही ना था। देखो इनके बाद ऐसे ऐसे लोग सरदार हो गए हैं कि अगर बदर का दिन ना होता तो वो कभी सरदार ना होते। यानी बड़े लोग मारे गए तो फिर जो बचे खुचे थे वही लोग आगे आए और सरदार बन गए। यहाँ से आप उस आग को और उस जलन को महसूस कर सकते हैं जो इनके सीनों पे थी। वो तो सोच भी नहीं सकते थे। और फतह का नशा बहुत बड़ा नशा होता है। मक्का की गली गली में सफ़े मातम बिछी हुई है। इसके बरक्स मदीना में फतह की खुशखबरी कैसे आई इसको भी देख लेते हैं कि मुसलमानों की फतह मुकम्मल हुई। अल्लाह के नबी ने 2 कासिद भेजे कि जाके मदीना में ख़बर दें। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को ऊपर वाले हिस्से में मदीना के भेजा गया और ज़ैद बिन हारसा को ज़ेरी हिस्से की तरफ भेजा के जाके ख़बर दो। अब जब मुसलमान बदर में थे तो पीछे से यहूद और मुनाफिकीन को प्रोपेगंडों का मौका मिल चुका था। उन्होंने झूठे प्रोपेगंडे किए, हत्ता कि ये बात तक फैला दी हुई थी कि अल्लाह के नबी कत्ल कर दिए गए। लेकिन जब हकीकत खुली तो उनकी आँखें खुल गईं। जब एक मुनाफिक ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को अल्लाह के नबी की ऊँटनी कस्वा पर आते देखा, क्योंकि आपने अपनी ऊँटनी उनको साथ दी ताकि लोगों को बात सच लगे कि ऐसा ना हो कि जी वो कहें ये खुद ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसने अल्लाह के नबी की ऊँटनी पर इनको आते देखा तो बोल उठा, अरे वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। देखो ये तो इन्हीं की ऊँटनी है, हम इसे पहचानते हैं, और ये ज़ैद बिन हारसा है जो शिकस्त खाकर भागा और इस कदर मरूब है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा क्या कहे। लेकिन जब दोनों कासिद पहुँचे, मुसलमानों ने इनको घेरा, अब जंग की खबरें सुनने लगे, अब उनको यकीन हुआ कि नहीं मुसलमान तो फतह हो गए। बदर का दिन तो यौमुल फुरकान बन गया। इसके बाद मदीना की गलियों में खुशी और शादमानी थी। अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से मदीना के दरोबाम गूंजने लगे। जो लोग मदीना में रह गए थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक देने के लिए बदर के रास्ते की तरफ चल पड़े। उसामा बिन जैद कहते हैं कि हमारे पास उस वक़्त ख़बर पहुँची जब अल्लाह के नबी की साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा को, जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी थी, दफन करके कब्र पर मट्टी बराबर कर चुके थे। इनकी तीमारदारी के लिए हज़रत उस्मान के साथ मुझे भी रसूलुल्लाह ने मदीने में छोड़ दिया था। यहाँ एक बहुत ही ख़ूबसूरत सा नुक्ता मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लम को जब भी कोई खुशी मिली, कोई फतह मिली, उसके पीछे ही कोई गम ज़रूर था। वो कहते हैं कि जिनके दर्जे हैं सिवा उनके लिए अल्लाह ताला ने कुर्बानियाँ भी बड़ी बड़ी रखी हुई हैं। ग़ज़वे बदर की इतनी बड़ी फतह है तो इसके बाद बेटी रुकैया की वफ़ात की खबर है, और इसके बाद जब तबूक के सफ़र से वापस आएंगे, जो एक और बहुत बड़ी फतह थी, तो उसके बाद आपकी दूसरी बेटी के दफन का वक्त था। मोमिन की ज़िंदगी यही है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कभी खुशी कभी गम, ये ज़िंदगी धूप और छांव है। हम में से अगर कोई आज खुश है तो मत सोचे कि हमेशा खुश रहेगा, और अगर आज किसी पर गम की रात आ चुकी तो गम ना कीजिए, हर रात के बाद सुबह होती है। मोमिन का काम यह है कि खुशी की तरह गम को भी कबूल कर ले, अल्लाह के फ़ैसलों को अल्लाह की रज़ा समझते हुए जब इंसान कबूल करता है तो काम नहीं छूटता। फिर एक और चीज़ देखिए कि बेटी फौत हो गई फिर भी काम नहीं छोड़ा। हम होते तो छुट्टियाँ दे देते, ये कर दो, ये हो गया, इतना गम है। बस सिर्फ हम अपनी ज़ाती गमों को इतना बढ़ा लेते हैं कि हम कौमी और इज्तमाई कामों को पीछे डाल देते हैं। बस जब हमारी ज़ाती खुशियाँ, सिर्फ़ एक शादी आ जाए हमारी ज़िंदगी में, कोई एक घर बदल लें, कोई छोटी सी चीज़ आ जाए, फिर देखिए हम यूँ उड़ जाते हैं जैसे खसो खाशाक की तरह। तो मोमिन वो है जो खुशी और गम के वक्त में भी अल्लाह के दीन के साथ जुड़ा रहता है। मुसलमान खुश थे, इतने में एक अब नई चीज़ सामने आई, और वो क्या थी कि जो माल गनीमत मुसलमानों को मिला इसका क्या किया जाए। चूँकि पहली पहली जंग थी तो पहली जंग के मौके पर अब पता नहीं था करें क्या, हर चीज़ नई थी। नबी सल्लम 3 दिन तक बदर में जब रहे तो आपने मैदान जंग से कुछ नहीं फरमाया कि माल गनीमत के बारे में लश्कर में इख्तलाफ राय हो गया। थोड़ी सी शिद्दत जब बढ़ गई तो नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसके पास जो कुछ है वो आपके हवाले करे। सहाबा कराम ने आपका हुक्म माना और वही के ज़रिए से फिर अल्लाह ताला ने माल गनीमत की बाँट का फ़ैसला किया, जो सूरत अल अनफाल में यसअलूनका अनिल अनफाल से सवाल शुरू हुआ था, और 10वें पारे के शुरू में फिर अल्लाह ताला ने उसकी जो बाँट थी वो बता दी। कितना प्यारा दौर था, ज़रा सा कोई मसला हुआ फ़ौरन उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से वही आ गई। और आज का दौर उससे भी अच्छा दौर है कि हर चीज़ मसला पेश आने से पहले ही कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर आज भी मुसलमान रहनुमाई लेने वाला हो तो उसके लिए हर मौके पर मसला पेश आने या उससे पहले ही उसकी रहनुमाई मौजूद है। हज़रत उबादा बिन सामत कहते हैं कि हम लोग नबी सल्लम के साथ मदीने से निकले और बदर में पहुँचे, लोगों से जंग हुई, अल्लाह ने दुश्मन को शिकस्त दी, फिर एक गिरोह इनके पीछे गया और उनको मारने लगा, कत्ल करने लगा, और एक गिरोह माले गनीमत पर टूट पड़ा और इसको जमा करने लगा, और एक गिरोह ने रसूलुल्लाह के गिर्द घेरा डाले रखा कि कहीं दुश्मन धोखे से आपको तकलीफ़ ना दे, क्योंकि अल्लाह के नबी की ज़ात को ख़तरा होता तो इस्लाम को ख़तरा था। जब रात हुई और लोग पलट पलट कर एक दूसरे के पास पहुँचे तो माल गनीमत जमा करने वालों ने कहा कि हमने इसे जमा किया है लिहाजा इसमें किसी और का हिस्सा नहीं। ज़हन में रखिएगा कि इस्लाम से पहले जब कुफार की जंगें होती थी तो जिसके हाथ जो लगता था वो उसका होता था, तो उस कानून के तहत कुछ लोगों ने सोचा कि जिसने जो ले लिया वो उसका, लेकिन जो लोग दुश्मन का पीछा कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग हमसे बढ़कर इसके हकदार नहीं हो सकते, क्योंकि इस माल से दुश्मन को भगाने और दूर रखने का काम हमने किया, यानी अगर दुश्मन ना जाता तो माल कैसे मिलता। और जो लोग अल्लाह के नबी की हिफाजत पर थे उन्होंने कहा देखो हमें ख़तरा ये था कि दुश्मन आपको गफलत में पाकर कोई अजियत ना पहुंचा दें, इसलिए हमने आपकी हिफाजत की। इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर्रसूल फत्तकुल्लाह वस्लिहु ज़ाता बैनिकुम वातीउल्लाह वरसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह अनफाल की बिल्कुल इब्तदाई आयात है कि लोग आपसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं, कह दो कि माल गनीमत अल्लाह और रसूल के लिए है, बस अल्लाह से डरो और अपने बाहमी ताल्लुकात की इसलाह करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर वाकई तुम मोमिन हो। इसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने माल गनीमत को मुसलमानों में तकसीम किया। यहाँ शायद किसी के जहन में सहाबा के बारे में कोई गलत फहमी आए तो चंद बातें कह देती हूँ। पहली बात यह कि बिल्कुल इब्तदाई दौर है, पहली जंग थी, अभी तस्किया वो नहीं हुआ, अभी तरबियत की कमी है। किसी भी स्कूल में आने वाला नया स्टूडेंट और वहाँ 2-3 साल से पढ़ने वाला, बिल्कुल फ़र्क होता है और होना चाहिए, तब्दीली आती है। अभी सहाबा कराम का वो मेयार नहीं था, मदीना में आकर तो फिर इनकी खूब तरबियत हुई थी, बाद में ये मामलात नहीं थे। दूसरी बात, इंसान थे, और तीसरी बात है कि शैतान हर जगह मौजूद होते हैं। लेकिन ये खूबसूरत बात देखिए कि जो ही अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कोई हुक्म आता था, फिर नहीं अड़ते थे, फिर नहीं कहते नहीं जी रहने दो। ये कभी नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी ने कुछ कह दिया और सहाबा किराम फिर भी लड़े, कुरान की कोई आयत आ जाए वो फिर भी ना सुने। अल्लाह के नबी के सहाबा किराम ऐसे ना थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज़ बदर में रहकर मदीना की तरफ चले, तो अब आपके साथ वो मुशरिक कैदी भी थे जो कि इस जंग में हाथ लगे, और माले गनीमत भी था। आपने अब्दुल्ला बिन काब को इस लश्कर की निगरानी सौंपी। जब आबादी सफरा के दर्रे से बाहर निकले, तो दर्रे और नाजिए के दरमियान एक टीले पर पड़ाव डाला और वहाँ खुम्स यानी पाँचवा हिस्सा अलग किया और बाकी माले गनीमत मुसलमानों में बराबर तकसीम किया। आयात चूँकि आ चुकी थी, और आप देखिए कि पूछा उन्होंने माले गनीमत के बारे में था, तो कहा वसलहु ज़ाता बैनिकुम, पहले आपस के ताल्लुकात तो ठीक करो। इससे पता चलता है कि मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात, एक दूसरे के साथ बात कैसी करनी है, उसके बारे में क्या सोचना है, ये ज़्यादा अहम है बड़े से बड़ा माल मिलने से। बहरहाल आपने उस दरमियान में वादी सफरा में ही खुम्स निकाला और मुसलमानों को सब कुछ दे दिया। फिर आपने वही हुक्म दिया कि नज़र बिन हारिस को कत्ल किया जाए। इस शख्स ने जंगे बदर में मुशरिकीन का परचम जो था उठा रखा था, और ये कुरैश के बड़े मुजरिमों में से था। इस्लाम दुश्मनी और रसूलुल्लाह को तकलीफ़ देने में ये बहुत हद से भड़ा हुआ था, चुनाचे हज़रत अली ने आपके हुक्म पर फिर इसको कत्ल किया। तो आप देखिए कि ऐसे लगता है कि जैसे कुफर की कमर टूट गई, कुछ खुद मारे गए, अबू लहब बाद में मर गया, इस तरह नज़र बिन हारिस उनका सरदार था वो मारा गया, इसी तरह उकबा बिन अबी मोईत के कत्ल का आपने हुक्म दिया, ये भी अल्लाह के नबी को बहुत तकलीफ़ देता था, और आपकी नमाज की हालत में आपकी पीठ पर ऊँट की उजड़ी डालता था। और ये वही शख्स है जिसने मक्का में आपकी गर्दन में चादर लपेट कर आपको कत्ल करना चाहा था, और अगर अबू बकर सिद्दीक उस वक्त ना आते तो ये शख्स तो अपने तौर पर आपको मार ही चुका था। चुनाचे अल्लाह के नबी ने इसके कत्ल का हुक्म दिया। कहने लगे मोहम्मद बच्चों के लिए कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया आग। अल्लाह अकबर। इसके बाद फिर हज़रत आसिम बिन साबित ने, और बात कहते हैं कि हज़रत अली ने इस शख्स को भी मार दिया। ये वो तागूत थे कि जिनके सरों को कुचलना लाजमी था, ताकि आइंदा के लिए मुसलमानों के लिए गलत चीज़ें ना सोचें और इस्लाम को ज़्यादा मुश्किल ना दें। बहरहाल यहाँ पे गज़वे बदर पूरी हुई, मुसलमान मदीना आ गए, चारों तरफ से आपको खुशखबरियों और मुबारकबादियों के पैगाम आने लगे। रोहा के मुकाम पर जब मुसलमान पहुँचे, तो इन मुसलमान सरबराहों से मुलाकात हुई, जो दोनों कासिदों से फतह की बिशारत सुनकर आपको इस्तकबाल करने के लिए आए और रास्ते में ही आपको मुबारक देने के लिए आए। हज़रत सलमा बिन सुलामा ने कहा, आप लोग हमें किस चीज़ की मुबारक दे रहे हैं? हमारा टकराव तो खुदा की कसम गंजे सर के बूढ़ों से हुआ था जो ऊँट जैसे थे, यानी वो उन सरदारों की तरफ इशारा था। इस पर अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, भतीजे यही लोग तो उस कौम के बड़े थे, मुराद यह कि वो बड़े बड़े सरदार मारे गए। या नोट कीजिएगा, मक्का की तरफ से जवान लोग नहीं मारे गए, और जवान इतने गुस्से में आते भी नहीं थे आपके मुकाबले में। जो लोग जितने बड़े होते हैं ना, वो अपनी रिवायात के उतने पाबंद होते हैं, और अल्लाह ने वो सब बड़ों से साफ कर दिया मैदान को। इस पर हज़रत उसैद बिन हुज़ैर कहने लगे, अल्लाह के नबी अल्लाह की हमद है जिसने आपको कामयाबी अता की और आपकी आंखों को ठंडक बख्शी। बखुदा मैं ये समझते हुए बदर से पीछे न रहा था कि आपका टकराव दुश्मन से होगा, मैं तो समझ रहा था बस काफ़िले का मामला है, यानी कोई इतनी बड़ी जंग तो होगी नहीं, और अगर मैं ये समझता कि दुश्मन से सामना पेश होगा तो मैं पीछे ना रहता। तो आपने कहा सच है, क्योंकि अज़वे बदर के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपने पहले से बात तो कही नहीं थी, लोगों को खुद उनके फ़ैसले पे छोड़ दिया गया था, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म था कि इतनी तारीख साज किस्म की जंग हुई। जब आप मदीना में आए तो गलियों में रास्तों में लोग आपको मुबारकबाद दे रहे थे, और इस फतह का एक असर हुआ, और वो क्या कि लोग इस्लाम में आने लगे। ये भी बस एक अजीब बात होती है, जब आपको कामयाबियाँ मिलने लगती हैं तो बाज़ दफ़ा वो लोग भी आपके गिरोह में शामिल होने लगते हैं जिनके अंदर अभी ईमान वो नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ दिखावे पे और पीयर प्रेशर पे इस्लाम में आते हैं। यही वो वक्त था कि जब अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथियों के साथ इस्लाम में आ गया, और बाद में इसने कितनी तकलीफ़ दी। यहाँ से पता चलता है कि जितना किसी गिरोह को फतह मिले उतना उसको केयरफुल रहना चाहिए, हर नए आने वाले पे ट्रस्ट करते हुए उसको हर चीज़ नहीं देनी चाहिए और हर एक को अपना नहीं समझ लेना चाहिए। ठीक है, ताल्लुकात के दर्जे तो होते हैं, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल उस लेवल पे ले आते हैं कि जहाँ पे कोई कितनी कुर्बानियों के बाद पहुँचे, तो इससे बाज़ों का तकलीफ़ भी होती है। अब जब आप मदीना में आ गए तो एक दिन के बाद फिर कैदी भी साथ आ गए। आपने सहाबा पर तकसीम किया और कहा, देखो इनके साथ अच्छा मामला करना। आपकी इस वसीयत का ये असर हुआ कि लोग खुद खजूर खाते थे और कैदियों को रोटी देते थे। ध्यान में रखिएगा कि खजूर मदीना में बड़ी मामूली चीज़ थी और रोटी कीमती चीज़ थी, आटा बाहर से आता था। लेकिन इतना डरते थे अल्लाह के मामले में और इन कैदियों से बुरा सलूक ना हो कि उनको अच्छी चीज़ खिलाते और ख़ुद हल्की चीज़ खा लेते। अल्लाह के नबी ने आकर कैदियों के बारे में मशवरा भी किया। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, अल्लाह के नबी, ये ख़ानदान ही के तो लोग हैं, कोई चचा का बेटा है, कोई कुंबे का है, मेरा ख्याल है कि आप इनसे फ़दिया ले लें और जो पैसा मिलेगा उससे इस्लाम की कुव्वत बढ़ेगी और हो सकता है हम इनको छोड़ें तो अल्लाह इनको हिदायत दे दें और कल ये हमारे मददगार बने। यानी अबू बकर की राय नरम राय थी और वो अपने तौर पर बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। आपने कहा, इब्ने ख़त्ताब, आपकी क्या राय है? हज़रत उमर से पूछा। कहने के, वल्लाही मेरी राय वो नहीं है जो अबू बकर की है, मेरी राय तो यह है कि आप फ़लां को, जो हज़रत उमर का करीबी था, मेरे हवाले करें, मैं इसकी गर्दन मारूं। अकील बिन अबी तालिब को अली के हवाले करें, वो उसकी गर्दन मारें, और फ़लां को, जो हमज़ा का भाई है, हमज़ा के हवाले करें। यानी हमारे रिश्तेदार हमारे हवाले किए जाएँ, यहाँ तक कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि हमारे दिलों में मुशरिकीन के लिए कोई नरम गोशा नहीं। अल्लाह अकबर, आप देखिए कि ये होता है ईमान। ये नहीं कहा, अच्छा मेरे को वो मार दे, मैं उसको मार दूँ, मुझे हौसला नहीं पड़ता, मैं देख नहीं सकता। इस किस्म की जज्बाती बातें नहीं करते थे लोग, बल्कि वो इस किस्म की बातें करते थे कि जिसके नतीजे में उनके ईमान की गर्मी महसूस होती थी। हज़रत उमर कहते हैं कि नबी सल्लम ने अबू बकर की बात पसंद की, मेरी पसंद नहीं की। चुनाचे कैदियों से फदिया लेना तय कर लिया। इसके बाद जब अगला दिन आया तो सुबह सुबह मैं अल्लाह के नबी और अबू बकर की खिदमत में आया तो ये दोनों रो रहे थे। वैसे ये भी बड़ा एक दिलसोज सा मंज़र होगा। कह रहे ये रो रहे थे। मैंने कहा, आप मुझे बताएं आप क्यों रो रहे हैं? अगर वजह ना मिली तो मैं सिर्फ इस वजह से रो पड़ूंगा कि आप रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर कहते हैं कि नबी सल्लम ने बताया कि फ़दिया कबूल करने की वजह से जो चीज़ तुम पर साथियों पे पेश की गई उस पर रो रहा, यानी कुरान में आयत आ गई थी कि फ़दिया नहीं लेना था बल्कि इनको कत्ल करना चाहिए था। फिर आपने एक करीबी दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा कि मुझ पर इनका अज़ाब इस दरख्त से भी ज़्यादा करीब पेश किया गया, और इस पर वो आयत नाजिल हुई, सूरह अल-अनफाल की आयत 67 और 68, मा कान अली नबी यकून लहू असरा। किसी नबी के लिए दुरुस्त नहीं कि इसके पास कैदी हों, यहाँ तक कि वो ज़मीन में अच्छी तरह खून रेजी कर ले, यानी कि उनको मार दो। जिन सरों में इस्लाम के ख़िलाफ़ इतना बुग़ज़ समाया हुआ है तो उन सरों को कुचल दो। लेकिन तुम लोग दुनिया का सामान चाहते हो और अल्लाह आखरत चाहता है, यानी माले गनीमत मिलना था, मार देते तो माले गनीमत नहीं मिलता। अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है, और अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये बात पहले ना लिखी होती तो तुम लोगों ने जो कुछ लिया है इस पर तुमको सख्त अजाब होता। यानी ये इज्तिहादी मामला था ना, अगर ये इज्तिहादी ना होता तो मुसलमानों की तरफ से इस गलत फ़ैसले पे अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ होती। सूरत मोहम्मद की आयत 4 में भी आता है, फ इम्मा मन्नम बादु व इम्मा फ़िदा, कि चाहे तो एहसान करो या फ़दिया लो। बहरहाल इस मामले पे आसमान से थोड़ी सी सरजिश की गई और इसमें हिकमत थी। अल्लाह ताला ने इन लोगों में से बहुत सारों को बाद में ईमान भी देना था, क्योंकि अभी कहानी यहाँ ख़त्म तो नहीं हुई, अभी तो इस मार्के का आगाज़ था जो बदर से लेकर तबूक तक चलता रहा। तो उसके बाद फ़दिया बहरहाल जो तय हो चुका था वो लिया गया। 4,000 और 3,000 दिरहम से लेकर 1,000 दिरहम तक मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ फ़दिया लिया गया। अहले मक्का चूँकि लिखना पढ़ना जानते थे, मदीना में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं थे, इसलिए फिर आपने बास लोगों का फ़दिया 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाना भी था, ताकि ये बच्चे सीखेंगे तो ये इनका फ़दिया। यहाँ से नोट कीजिएगा, मदीना में आने के बाद जो पहले टीचर थे वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये रिस्क लिया लेकिन इल्म सिखाया। आज हम कहते हैं गैर मुस्लिम जगहों में बच्चे जाएंगे क्या होगा? नहीं, आप उनकी बुनियाद मजबूत करें तो उन गैर मुस्लिमों को भी इंशाल्लाह मुस्लिम कर लेंगे। कुछ कैदियों पर एहसान किया गया, उनको बग़ैर फ़दिये के रहा कर दिया गया। मुतलब बिन खंतप, सैफ़ी बिन अभी रुफ़ाया और अबू इज़्ज़ा के नाम आते हैं। लेकिन इनमें से जो बाद वाले आखिरी, इनको गज़वे उहद में कत्ल और क़ैद किया गया। बहरहाल एक दो बहुत ही दिलसोज किस्म के मंज़र आए थे जिसमें एक अबू लास जो आपके दामाद थे उनके बारे में आता है, क्योंकि इनके फ़दिया के लिए हज़रत ज़ैनब जो इनकी बीवी थी उन्होंने एक हार भेजा था और वो हार हज़रत खदीजा का था। अल्लाह के नबी सल्लम ने जब ये हार देखा तो आप पर इक्कत तारी हो गई, आप रोए, आपने सहाबा से इजाज़त ली कि अगर तुम चाहो तो क्या मैं अबू लास को बग़ैर फ़दिया के छोड़ दूँ। सहाबा ने कहा हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, इसलिए फिर अबू लास को छोड़ दिया, सिर्फ़ इस शर्त पर कि वो हज़रत ज़ैनब को नहीं रोकेंगे क्योंकि वो मुसलमान हो चुकी थी। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और हज़रत ज़ैनब फिर मदीना में आ गई। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन हारसा और एक अंसारी साहबी को भेजा और ये दोनों जाके हज़रत ज़ैनब को लेके आ गए। बाद में फिर हज़रत अबू लास भी मुसलमान हो गए थे। एक अलग कहानी है, बहुत सारे इंसानी जज्बात हमें सीरत में मिलते हैं। बस दुआ ये करें कि अल्लाह ताला हमें इन सारे बातों को सुनकर अपने से मुकाबला करने वाला बना दे, हम इनको कोई सुपरमैन्स ना समझें। हम भी ऐसे ही इंसान हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना लेते हैं। इस तरह कैदियों में एक सुहैल बिन अमर था, बहुत बात करता था, खतीब था। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी सुहैल बिन अमर के अगले दो दांत तोड़वा दें, जब भी इस्लाम के खिलाफ बात करेगा इसकी ज़ुबान लिबट जाएगी और ये फिर ज़्यादा बातें नहीं कर सकेगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, ये तो मसला होगा, और इस्लाम दुश्मनों के साथ भी ऐसे इंसानियत सोच सलूक को पसंद नहीं करता। कहा मुझे क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ का डर है। इसी तरह साद बिन नौमान उमरे के लिए निकले तो अबू सुफियान ने इनको कैद किया। अबू सुफियान का बेटा अमर भी जंगे बदर के कैदियों में था, तो अमर को अबू सुफियान के हवाले किया गया और फिर इसने हज़रत साद को छोड़ दिया। तो ये थी गज़वे बदर, बातें तो इसमें और बहुत सारी हो सकती हैं। कुरान पाक में इस पर तबसरा बहुत मिलता है, सूरत अनफाल में जाके पढ़ सकते हैं आप और सूरत आल इमरान में पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं तफसीलात की, और अल्लाह ताला ने कैसे मुसलमानों की मदद की, क्या वो मकासिद और बड़े अजाइम थे जिसके लिए ये जंग हुई, इसके बाद इस्लाम को कितना कुछ मिला, ये सब कुछ अल्लाह ताला की देन भी थी।